ओम शांति। देखो जब हम मधुबन में आते हैं ना, गीत सुन रहे थे ना बाबा का, नहीं भूलेंगे तेरा प्यार, तो जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने मम्मा बाबा को देखा है, और जब हम उनसे सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, उनकी वाणी में जो भावना होती है उसको सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो एक वो अनुभव अलग तरह का होता है। जैसे हमने बड़ी दादी या चंद्रमणि दादी जिनसे हम मिले, आमने सामने जब अनुभव सुनते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। सेम जब आप मधुबन में आते हैं तो एक बहुत सुंदर सा अवसर होता है कि जो मधुबन के मधुबन निवासी होते हैं, हाँ कई कई मधुबन निवासी ऐसे होते हैं कि लाइक वो स्टेज पे नहीं आते हैं लेकिन उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। हाँ वो टीवी चैनल्स पे नहीं आते हैं, यूट्यूब पे नहीं होते हैं, लेकिन वो जैसे बाबा बोलते हैं ना, गुप्त रत्न होते हैं, छुपे हुए अनसंग हीरोज होते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में है हमारे आदरणीय महेश भाई जी। हाँ हम सब एक हाथ से भाई साहब का स्वागत करेंगे। हाँ जैसे मैंने बोला, भाई साहब लगभग 50 वर्ष से बाबा के ज्ञान में हैं, और आपको मधुबन में बुलाया ही जगदीश भाई ने, मतलब जब लिटरेचर की बुक्स का कंपाइलेशन करने के लिए आप शुरू से भाई साहब के साथ में, आपने बहुत सारी बुक्स में भाई साहब का जो लिख के देते थे बुक्स बनाई हैं। तो जैसे ज्ञान का खजाना, मैं भाई साहब के साथ कई इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो जब मैं सुनता हूँ ना तो सच में कि जैसे होता है ना, बाबा बोलते हैं ना, आप योग करते करते लोहा भी गर्म हो जाता है ना, राइट, मट्टी में डालते। तो जगदीश भाई तो बाबा तो उनको जैसे संजय बोलता था, गणेश बोलता था, लेकिन भाई साहब भी एकदम ज्ञान की इतनी गहरी बातें, तो आज हम देखेंगे, भाई साहब से सुनेंगे, और इवन अगर आपके क्वेश्चन हो तो हम बाद में लेंगे भी, अगर कोई ऐसे मन में विचार आते हैं आपके, जरूर आप सुनना। तो भाई साहब लगभग 50 साल से ज्ञान में हैं, आपकी दो बहनें सरेंडर हैं, सेंटर रन करती हैं, माता पिता सब लोग ज्ञान में हैं। तो ऐसी महान भूति आज हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब, ये बहुत ही हमारे लिए भी एक भाग्य की बात है कि हम आप जैसी महान आत्मा से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। भाई साहब शुरुआत हम जगदीश भाई जी के साथ से ही करेंगे। मैंने उनकी बुक पढ़ी, वैसे तो उन्होंने सारी हमारा जो लिटरेचर है इतना बड़ा भाई साहब ने लिखा है। अच्छा इंटरव्यू करने से पहले हम जानना चाहते हैं, जिन्होंने जगदीश भाई जी को देखा है वो कृपया एक बार हाथ उठाएं। हाँ बहुत थोड़े लोग हैं। आज हम जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं, जितना भी यज्ञ की बुक्स हैं, वो भाई साहब ने सारा लिखा है। ब्रह्मा बाबा बोलते थे, लाइक बाबा ने उनको टाइटल दिया है संजय का, जितना भी ज्ञान का स्पष्टीकरण जो संसार के सामने प्रस्तुत हुआ है, शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान दिया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण हमारे जगदीश भाई जी ने किया, तो बाबा उनको संजय और गणेश की टाइटल देते थे। उन्होंने सारा लिटरेचर लिखा, लेकिन उनके ऊपर एक बुक है अगर आप पढ़ेंगे तो, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। हाँ वैसे जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें जो होता है ना इंट्रोडक्शन, उसमें ही था कि उनको दुनिया की हर विषय पे उन्होंने लिखा है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, खगोल विज्ञान हो, हर विषय पे लिखा है, स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोनॉमी, हर सब्जेक्ट पे लिखा है। बाबा फिर उनको टाइटल भी देते हैं, स्पिरिचुअल टाइटल देते हैं। आपने उनकी जो छवि थी, आपने उनकी पर्सनैलिटी को क्लोजली देखा है, आप उस छवि को कैसे देखते हैं? इतनी सारी व्यक्तित्व उनके अंदर कैसे थे? वो इतना सारा मैंने बुक में पढ़ा, रमेश भाई बोलते हैं उनकी बुद्धि 7 फीट लंबी है, तो ऐसी महान छवि को आपने कैसे देखा?
ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि अलौकिक जन्म होते ही बाबा ने मुझे लिटरेचर की सेवा दी। मैं पढ़ता था, पढ़ते समय बाबा का ज्ञान मिला, तो ज्ञान में आते ही आर्टिकल लिखने का चांस मिलने लगा। तो सबसे पहले मैंने जो आर्टिकल लिखा वो जगदीश भाई साहब के एक हिंदी आर्टिकल का ट्रांसलेशन। मुझे ये पता नहीं था कि मैं आगे जाके जगदीश भाई के सेवा के सहयोगी बनूं, लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में पढ़ता था तब से ये लिटरेचर की सेवा शुरू हो गई। तो मैं लगभग 1987 से लेकर 2001 तक उनके कनेक्शन में रहा, और खास करके जब ज्ञान सरोवर बना 95 से लेकर 2001 तक उन्हीं के डिपार्टमेंट में मैंने मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जगदीश भाई साहब को तो सब जानते ही हैं।
नहीं भाई साहब, बहुत सारे नए लोग हैं उनकी,
और खास करके हमारी टीचर बहने तो अच्छी तरह जानती है। लेकिन मैं सबसे पहले उनमें ये देखा, शायद आप लोगों ने भी वो किताब पढ़ी होगी, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। वो किताब बनाते समय जब बनाने शुरू किया तो पता नहीं बाबा ने कैसे 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 वो सारे उनके क्लासमेट्स, उनके नजदीक रहने वाले, उनके लौकिक जीवन को जानने वाले, वो सब मिल गए अभी। लेकिन जब वो किताब तैयार हुई वो कोई नहीं रहे, सब चले गए थे। मतलब बाबा को किताब बनाना था। जब मैंने उनसे पूछा, भाई साहब सबकी जीवन कथा बन रही है तो आप अपने भी अपने बारे में किताब लिखिए, क्योंकि सब लोग पूछते हैं भाई साहब अपने बारे में क्यों नहीं लिखते। लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा होगा? उन्होंने बोला, सिर्फ एक संगम युग है भगवान को प्रत्यक्ष करने का समय, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक। मैंने किताब में लिखा हुआ है ना, किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखा, किसी ने बायोग्राफी लिखा, किसी ने शिष्य ने अपने गुरु का लिखा, किसी ने रिश्तेदार ने उसका लिखा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा तो ये बड़ा पाप हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। तो इसके बाद भी वो भाई साहब जाने के बाद भी कई लोग कहीं भी जाते हैं तो कहीं सेंटर पर जाते हैं तो सब भाई बहन पूछ लेंगे, भाई साहब हम तो ज्ञान तो बहुत सुना है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, भाई साहब के बारे में बताइए। तो जहां भी जाए तो मुझे संकल्प चलने लगा, अभी क्या करें, सब लोग पूछते हैं भाई साहब के बारे में बताइए। फिर आखिर मैंने एक दिन बाबा कमरे में गया, मुझे बाबा देखो सबकी डिमांड है, क्या करें। उन्होंने तो मना कर दिया किताब लिखने के लिए। तो फिर बाबा को बता के, बाबा मैं एक किताब बनाने जा रहा हूं, आप मदद करना। तब उसी समय जो टीचर्स एनुअल अकाउंट होता है ना, वो लास्ट टर्न था पांडव वन में जो हुआ, उसके बाद सारे अकाउंट्स नीचे चला गया। उसी समय दिल्ली के, पंजाब के, मतलब ऑल ओवर इंडिया सब टीचर्स बहने आ गए, तो उनको हम अपॉइंटमेंट लेके सब अनुभव कलेक्शन करके वो किताब बना रहा। अच्छा, भाई साहब का जो मेन इतने सारे क्वालिटीज आने के लिए मैं समझता हूं, जो उनके साहित्य अध्ययन करने के बाद, बनाने के बाद, उनको नजदीक देखने के बाद, उनका व्यवहार समझने के बाद, सबसे जो मुख्य उनमें जो गुणता, भगवान के प्रति अटूट प्रेम। अगर आप उनके जिंदगी में लौकिक या अलौकिक कोई भी जीवन हम देखते हैं, वो परमात्मा को पाने के लिए बहुत, उन्होंने बहुत माना, बहुत खोज किया। लौकिक में भी जहां भी सत्संग होते थे वहां जाया करते थे, संत महात्मा, फकीर, सूफी संत जो भी हो सबके पास जाते थे। आप परमात्मा को देखा है? आप परमात्मा को मुझे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? इस तरह
पर तो, उनकी मतलब वो भी बहुत जल्दी ज्ञान में आ गए थे ना, 21 22 साल भाई साहब की एज थी तभी ज्ञान में आ गए थे ना। जगदीश भाई जी वो जल्दी ज्ञान में आ गए थे ना, बहुत यंग एज में ही। तो उससे पहले उन्होंने ये सारी,
उससे पहले भी वो जब पाकिस्तान में थे, मुल्तान में थे, उस समय उनको टचिंग होता था, वहां जाओ सिंध हैदराबाद जाओ सिंध हैदराबाद जाओ। वो एक दिन घर में बिना बता के वो सिंध हैदराबाद चले गए थे, कराची भी चले गए थे बता रहे। वहां हमने देखा सफेद कपड़े वालों को देखा, लेकिन पता नहीं पड़ा ये ब्रह्मा कुमारिया। तो उनको खींच होती था, ऐसा लगता था वहां जाओ वहां जाओ। तो उन्होंने एक बार ये भी कहा, जितना मैंने बाबा को याद किया है, जितना मैंने उसको ढूंढा है, जितना मैंने भगवान को आह्वान किया है, उतना ही बाबा मुझे ढूंढा भी है, प्यार भी किया है भी और चाहा भी है। ये अपना अनुभव में एक बार सुनाया था। शुरुआत में जब वो ज्ञान में आए थे, बाबा यहां मधुबन आते थे, तब लगभग 10-15 साल तक ऐसी कोई साकार मुरली नहीं थी जिसमें जगदीश भाई को बाबा ने याद नहीं किया हो, साकार बाबा। कई बार जब मधुबन आते थे जगदीश भाई, तब बाबा कमरे में होते थे, तो जगदीश भाई वहां जाते ही जब दादियों को जो बाबा के सामने बैठे रहते थे उनको बाहर भेज देते थे। तो एक बार चलो दो बार चलो, हर बार ऐसा करते तो दादियों को तो थोड़ा संकल्प आता है ना। तो एक बार मनोहर दादी ने पूछ लिया, बता रहे बाबा जब जगदीश आता है तो हम आप हमें क्यों बाहर भेजते हो। तो बाबा ने क्या बोला क्या बोला होगा, आपने तो सुनी होगी ना कैसेट से, आप किताब में पढ़ी होगी। बाबा ने बोला मैं क्या करूं, जब ये जगदीश आता है ना तो ऊपर वाला प्रवेश कर देता है, वो कहता है मेरे उससे बात करनी है, उसको कुछ सजेशन देना है, डायरेक्शन देना है। ऐसे शिव बाबा उनके साथ रात रात घंटों भर डिस्कशन करते थे। तो देखिए, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भगवत प्रेम, प्रभु प्यार जो है ना, वही सबसे बड़ा जो है ना हमारे लिए प्रॉपर्टी है। अगर वो एक जायदाद संपत्ति प्रभु प्रेम की हमारे पास है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता मैं समझता हूं जगदीश भाई साहब में थी, वही उनको आगे बढ़ाया।
और भाई साहब इतने सारे विषयों का उनके पास ज्ञान, मतलब ये उनकी अपनी प्रखर बुद्धि थी या बाबा ने उनको, मतलब जैसे हमने लास्ट में भी उनका सुना, यू नो भाई साहब हर विषय पे, मेडिकल पे भी बोलते थे, एस्ट्रोनॉमी पे भी, उनका वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा, मतलब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं आज भी जो उस बुक को पढ़ते हैं वो बोलते हैं ये तो कोई डॉक्टरेट जिन्होंने किया है, डॉक्टर है वो लिख सकता है। तो इतनी प्रखर बुद्धि, ये बाबा की देन थी या मतलब उन्होंने खुद इतना,
इसमें तो दोनों होते हैं ना। देखो जब तक आत्मा में संस्कार नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ग्रहण करने की, तो वो कैसे है। और उसके साथ तो जब भगवान का जो आशीर्वाद मिल जाता है, वरदान मिल जाता है, तो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रकटित हो जाता है। इसलिए दोनों थे। इसलिए मैं यही कह रहा हूं बार बार हरे को, बाबा पर जितना जिसका प्यार है उसको जब प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं उतना सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो वो तो थे ही, क्योंकि बाबा मिलने से पहले उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया अपनी स्टडी से अलावा। वो तो कॉलेज में स्कूल में पढ़ना वो एक निमित्त था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सारे धर्मों का ओरिजिनल ग्रंथ भी पढ़ा बता रहे, क्रिश्चियन इस्लाम बौद्ध गीता ओरिजिनल जो होते हैं उन्होंने वो पढ़ा, क्योंकि उनमें जो भगवान को पाने की जो इच्छा थी वो बहुत तीव्र थी। और बाबा को पाने के बाद भी उन्होंने बाबा को इतना प्यार दिया, इतना महत्व दिया, इतना उनके ना सिरमाथे थे, उसका भी बहुत असर पड़ता है। हम बाबा के तो बच्चे बन गए, बाबा को जान लिया, लेकिन बाबा की आज्ञाओं को हम कहां तक और किस हद तक हम पालन करते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है।
भाई साहब के अनुभव में था जैसे वो बाबा से मिलने आए, वो तीन भाई थे एक कमरे में रह रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनको जाना था, लेकिन वो नहा के गए, लोग ऐसे लाइक शॉल डाल के चले गए थे, लेकिन भाई साहब अपने अनुभव में बोलते हैं कि मेरे को आया कि मैं वो सुप्रीम से मिलने जा रहा हूँ, यू नो, जो इतने ऊपर से है, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। और फिर उन्होंने मतलब जैसे होता है ना, उनके भाव से भी लग रहा था कि उसके बाद ये मेरा जैसे नियम बन गया, यू नो। तो जैसे आपने बोला कि परमात्मा को जानना और उसको उतना भाव देना, उसको उस नजर से पहचानना, मानना, ये सच में। और इसी में वैसे शायद ये भी है कि उन्होंने बोला कि आज से जो हम लिखेंगे वो केवल श्री बाबा के लिए लिखेंगे। ये भी उनके अनुभव में आता है कि जो मैं लिखूंगा आज से मेरी कलम केवल श्री बाबा के लिए लिखी जाएगी, यू नो।
उसके बारे में बहुत लंबी कहानी है, उसके बारे में तो
शॉर्ट में वैसा।
जब जगदीश भाई मधुबन आए थे तब बाबा ने बोला कुछ ये लिखो मेले के लिए या कुछ के लिए, कुछ लिखो, एक छोटी सी किताब बनाने के लिए बोला, संदेश देने के लिए। तो इन्होंने लिख के बाबा को दिया, तो बाबा को इनको टेस्ट करना था, परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने क्या किया, दादियों को दिया, सब दादियों को, मनोहर दादी, रसमणी दादी हो, बड़ी दादी, कोई भी दादी हो उस समय, सब दादी को पढ़ने के लिए दिया। जब वो पढ़ के वो वापस आया तो वो जो ओरिजिनल जो आर्टिकल
मूल रूप
था ही नहीं, टोटल बदल गया था। तो बाबा ने उसको बुला के, उनको बुला के दिया, भाई लो ये। तो तब उन्होंने बोला बाबा को, बाबा ये तो पूरा आर्टिकल ही बदल गया। तो फिर बाबा ने बोला ठीक है, तुमने जो लिखा है वही फाइनल है। उस समय बाबा ने वरदान दिया, तुम दो भी लिखोगे संस्था की तरफ से वो अथॉरिटेटिव है, इस तरह से।
और वैसे पिछले अनुभव में शायद आपने ये भी बोला था कि बाबा ने मम्मा को भी बोला कि मम्मा आप इनकी बुद्धि पे जैसे बैठ जाओ।
वो भी एक घटना, वो भी एक कहानी है। शायद एक बार बाबा और बच्चों को लेके पहाड़ी गए थे घूमने के लिए, बच्चों को लेकर, मम्मा नहीं गए थे उस समय, बाबा गए थे। तो सब जब जंगल में गए ना, जो छोटी छोटी जो लकड़ी होती है वो सारे चुन के ले आने के लिए बोला, ले आए। तो जब आए, जब मेन गेट पर, मधुबन के मेन गेट है ना, तो वहाँ आए तो बाबा ने मम्मा को बुलाया। तो जब आए तो मम्मा वैसे भी रिसीव करने के लिए गेट पर आई होगी, तो बाबा ने बोला जगदीश भाई को, जगदीश तुम जगदम्बा की आरती गाओ। तो जगदीश भाई चुप खड़े हो गए, क्या बात है। तो जगदीश भाई ने बोला, बाबा आपने तो बोला जितना भी तुम बाहर के पड़े हो वो सारे भूसा है, वो बुद्धि से निकाल दो, भूल जाओ। अभी मैं सब कुछ भूल दिया, निकाल दिया, अभी कहां से गाऊं। देखिए, तो बाबा ने बोला था, सबको बोला, सिर्फ जगदीश भाई को नहीं बोला ना, भाई बुद्धि में जो पढ़ा लिखे ना, लौकिक भक्ति मार्ग जितना भी हो कचड़ा, वो भूसा है, उसको निकाल दो। तो हमने निकाली, आपने भी सुनी होगी ना, मुरली में, साकर मुरली में वो सारा कचरा निकाल दो, आप सबने निकाला है, थोड़े बहुत होगा ना, भाषण करने के लिए या किसी को समझाने के लिए थोड़ा बहुत बाहर का रेफरेंस चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने कहते, बाबा मैंने, आपने बोला तो मैंने निकाल दिया। तो कोई बात नहीं, एक लाइन तो आती होगी ना, तो वो ही गा लो। तो एक लाइन मम्मा की आरती उन्होंने गाई। तो वो जो लकड़ी लाए थे ना, उनको लेके उनके चरणों पर डाला। तो फिर मम्मा कहते, मम्मा इतना अपनी जो अवस्था थी, जगदम्बा की स्थिति में स्थित होके सबको दृष्टि दिया। तो बाबा ने बोला, मम्मा इसकी बुद्धि में बैठ जाओ। मम्मा चुप गंभीर होके फिर दोबारा पूछा, मम्मा बैठ गई। हाँ बाबा बैठ गए। तो शायद इसकी एक रेफरेंस, एक कहानी आती है, आपने सुना होगा, कालिदास की कहानी सुनिए
जी,
कवि कालिदास, जितने संस्कृत में बहुत कुछ लिखा। तो उसका भी वही है, जब वो एक गडरिया था, जब उसने काली से प्रार्थना किया तो क्या आता है उसमें, जीव पर ओम लिखती है। और यही कहानी शास्त्रों में भी आता है, कहते हैं जो सरस्वती का जन्म कृष्ण के जीवा से हुआ। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की पुत्री है ना सरस्वती। तो इस तरह कुछ कुछ बाबा बोलते हैं ना, जैसा भक्ति मार्ग के ग्रंथों में भी नमक जितना सच्चाई है, उसी प्रकार कई ऐसे बातें हैं बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में, सरस्वती के बारे में, गणेश के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, आप सब के बारे में, थोड़ी 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 नमक जितना सच्चाई है।
बाबा भाई साहब को संजय या गणेश, मतलब वो टाइटल कैसे, मतलब क्यों देते थे वैसे, उसके पीछे क्या रहा है?
मैं तो ये बताऊंगा आपको, संजय की कहानी तो सुनी होगी ना,
संजय को क्या प्राप्त, महाभारत
क्या प्राप्त थी? दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ना। दिव्य दृष्टि से वो क्या करता था? करो के पास, धृतराष्ट्र के पास होते हुए भी कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में क्या हो रहा है वो सारा बताता था। और उसी एक कोई एक अर्जुन को और एक संजय को, इन दोनों के क्लियर और स्पष्ट दिखाई पड़ता था, और किसी को नहीं, सब दूर दूर थे। इसका अर्थ क्या है? जगदीश भाई रहे कहां? वो कहां रहते थे? दिल्ली में, हस्तिनापुर। संजय कहां रहता था? धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में, कौरवों की राजधानी है ना दिल्ली, उस समय भी अभी भी। तो वहां कलयुग में रहते हुए भी उन्होंने कितने किताब लिखी?
कितना नंबर है सर? 350? कितना है?
लगभग 200 के आसपास है।
200।
वहां बैठे हुए भी हम लोगों को ज्ञान का जो स्पष्टता जितना नहीं है उतना उनको थी। उन्होंने सब कुछ लिखा, भविष्य के बारे में भी लिखा, वर्तमान के बारे में भी लिखा, सृष्टि के बारे में भी लिखा। तो उन्होंने जो किताब लिखी, जैसा वो अंधा धृतराष्ट्र को स्पष्ट होता था युद्ध में क्या हो रहा है वहां पे, उसी प्रकार जिन्होंने भी नॉन बीके उन किताबों को पढ़ा है, उन सब ने इस नॉलेज का समझने के लायक तो बने, संस्था के प्रति उनकी भावना तो जरूर बढ़ी। तो बीके को तो बात अलग है। तो इस प्रकार, इसके अलावा अभी शैलेंद्र भाई बोल रहा था, शैलो उनको जो है ना आगे क्या होता है वो भी दिखाई पड़ता था, कौन कब शरीर छोड़ता है, कहां छोड़ता है, कैसे छोड़ता है, तो वो भी उनको पता था। और उतना भी नहीं, अगर आप में से कोई उनके सामने जाके एक मिनट भी दृष्टि देते तो आपके सारे जन्म कहानी, जन्म पत्री हो उनको पता पड़ता था, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा संजय को बोलते वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी। क्यों? जगदीश भाई साहब भी बहुत बड़ा विद्वान थे और ज्ञानी भी थे। और ये भी कहते हैं संजय जो था वो धृतराष्ट्र का सारथी था।
सारथी
माना
रथ चलाने वाला,
रथ चलाने वाला। कहीं भी हो रथ में जो बैठा रहता है रथी, उसकी रक्षा, उसको सही रास्ता दिखाने वाला, रास्ते पर ले जाने वाला सारथी होता है। अगर लड़ाई के मैदान में भी अगर सारथी ठीक नहीं रहा तो वो जो कितना भी महावीर हो वो विजय नहीं हो सकता। इसलिए जो योद्धा जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा अधिक जो बुद्धिमान सारथी होता है, वो पूरी उसकी जीवन चलाने वाला वही होता है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे इस ईश्वरीय यज्ञ रूपी रथ को, बाबा तो है ही, साथ साथ उसको सुचारू रूप से कहां ले चलना है, कैसे ले चलना है, कहां रोकना है, कहां दौड़ाना है, ये सारा काम किसने किया? जगदीश भाई ने किया। ऐसे कई विशेषता है संजय की, और संजय एक तरह का ऋषि भी था बताते। जगदीश भाई के साहब का तो घर का नाम तो वही था, घर में सब उनको ऋषि नाम से पुकारते थे
जी। वैसे आपने जैसे बताया ना कि गणेश बाबा उन्हें गणेश भी बोलते थे, तो गणेश तो गणेश किस भाव में बोलते थे?
महाभारत किसने लिखा, कोई बताएंगे?
वेद व्यास, व्यास जी ने सर,
व्यास, वेद व्यास। वेदों को किसने लिखा, वेदों को किसने लिखा? चार वेद बताते हैं ना, चार वेदों को किसने लिखा और महाभारत को किसने लिखा? ठीक ठीक उत्तर देना, महाभारत का लेखक कौन कौन है? सब बोलेंगे व्यास, वो ये कि कोई बोल रहे वहां गणेश। आपको पता होगा व्यास को जब दिखाई पड़ा, उसको व्यास को दृष्टा बोलते हैं ना, उसने महाभारत या वेदों को लिखने का शुरू कर दिया, लिखने का तैयार करने का मन कर लिया। तब उसको एक स्टेनो चाहिए था, स्टेनोग्राफर, लिखने वाला, क्योंकि वो बोलने वाला व्यास, व्यास माना टीचर, आचार, सुनाने वाला, तो उसको बोलना था, उसके लिए एक लिखने वाला था। तो व्यास महर्षि ने क्या कुछ
बोल रहे हैं कि
व्यास महर्षि ने डिक्टेट किया, गणेश ने लिपिबद्ध किया। तो यहां व्यास कौन है एक्चुअली?
शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
ब्रह्मा बाबा, क्योंकि व्यास भी है और एक व्यासेश्वर भी है। आपने नाम सुना है व्यासेश्वर? ओडिशा में एक मंदिर है शिव बाबा का, व्यासेश्वर नाम से, व्यास का भी ईश्वर, और कौन है? शिव बाबा। व्यास माना ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा भी कम नहीं है ना, वो भी त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं। तो ब्रह्म बाबा ने डिक्टेट किया, जगदीश भाई ने लिपिबद्ध किया, सब उनकी प्रेरणा से है ना। तो इसलिए गणेश का नाम बाबा ने दिया। और गणेश का भी एक विशेषता है, गणेश किसका बेटा है?
शिव जी का।
हैं? सोच के बताना। पार्वती का बच्चा था वो, पार्वती ने तैयार किया था। वो कैसे तैयार किया था आप तो जानते हैं, वो तो असंभव है। अपने पसीने से जो मैला था ना शरीर पर, उसको निकाल के उसके उस मिट्टी से उसने बनाया पता, वो अलग कहानी है। तो वो सबसे प्यारा पार्वती का बेटा था वो। तो साकार में भी जगदीश भाई सबसे प्यारा किसका था? पार्वती कौन है यहाँ पे?
ब्रह्मा बाबा,
ब्रह्मा बाबा। क्योंकि जब बाबा थे, साकार बाबा थे, तब मधुवन में तो मुख्य रूप से दीदी रहती थी, बड़ी दादी बॉम्बे में रहती थी, तो इसलिए बाबा हर काम के लिए, इंटरनल सेवा के लिए दीदी, और बाहर का ऑफिशियल सेवा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की सेवा के लिए जगदीश भाई पर डिपा, हर बात पर जगदीश भाई को याद करते थे और बुलाते थे। तो शिव बाबा का तो प्यारा है ही, तो साथ साथ ब्रह्मा बाबा का अति प्यारा थे, इसलिए गणेश भी ये कह सकते। और गणेश को तो और कई विशेषता है, और कोई एक टॉपिक कभी हो तो कोई सुना दे।
वैसे आपने सच बोला कि जैसे एक सारथी होता है, मतलब पूरी जो बागडोर होती है युद्ध में, कैसे युद्ध नीति में राजा को कैसे लेके जाना है, कैसे संभाल करनी है, वो सारथी की होती है। हमारे यज्ञ में भी हम देखते हैं अपनी सेवाओं में, चाहे वो विंग की बात हो, प्रदर्शनी की बात हो, सेवाओं की बात हो, तो आज भी हम भाई साहब के बहुत सारे जो उन्होंने जो पाथ बनाया था, जो रास्ता था, आज भी हम उनको फॉलो करते हैं सच में। वैसे आप फ्यूचर की बात कर रहे थे कि जगदीश भाई जी भविष्य देख लेते थे, उन्होंने जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि बाबा जब अभिक्त हुए होने वाले थे तो उनको पता था कि बाबा कुछ होने वाला है, ऐसे दीदी के साथ भी उनको पता था और बाबा को भी मालूम था कि इनको पता है तो उनको यहाँ से भेज दिया, राइट? ऐसा
वो भी बहुत बड़ा, वो भी एक कहानी जैसा है। जब जनवरी महीना जब था 1969 का, जब पार्टी आए थे, जगदीश भाई भी यही थे, बता रहे मधुबन में थे, मैं समझता हूँ जनवरी 8-10 तारीख होगी। तो बावन जगदीश भाई को बुलाया कमरे में, बेटा बच्चा तुम दिल्ली चले जाओ। तो जगदीश भाई बोला, नहीं बाबा मैं और थोड़ा दिन रहता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा पूछा, तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या, सेवा नहीं है क्या दिल्ली में, ऐसा पूछा बाबा ने। क्यों बाबा? नहीं, ये बहुत दिन हो गए यहीं बैठे हुए, दिल्ली नहीं जाना? नहीं बाबा, थोड़े दिन यहीं रहना है। नहीं 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 रहना, चले जाओ। तो नहीं बाबा, मुझे रहना है। क्योंकि उनको भी पता था, ब्रह्मा बाबा को, ये रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और इनको भी पता था बाबा जाने वाले। तो लेकिन बाबा ने जबरदस्ती से उनको भेजा, तो बाबा की आज्ञा है, तो कभी भी बाबा की आज्ञा वो उन्होंने ना नहीं बोला, चले गए। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, अब रात को हर बार जो भी फोन आता था वहां कमला नगर में, यही उठाते थे। लेकिन उस दिन 12 बजे फोन आया, तो फोन जो है ना, एक कमरे में दादियां सोया करती थी, गुलजार दादी थी, बीच में एक टेलीफोन रखता था, बगल वाला कमरे में जगदीश भाई सोते थे, बता रहे उधर। तो जब रात 12 बजे घंटी बजी टेलीफोन की, तो उन्होंने उठाया नहीं, तो गुलजार दादी ने आवाज दिया, जगदीश भाई फोन उठाओ। तो भाई साहब ने बोला, दादी आज आपको उठाना है। नहीं, आप ही उठाओ। नहीं, आज नहीं उठाऊंगा। जब उन्होंने उठाया तब बड़ी दादी ने मैसेज दिया, बाबा अव्यक्त हो गए। तो तब जगदीश भाई ने बोला, इसलिए मैं नहीं उठाया, मुझे पता था। तो ये समाचार आपके पास, आपसे पहले सुने सब। ऐसे कई बातें, जैसे भाव विश्व किशोर भाव जब बाबा से विदाई लेके गए ऑपरेशन कराने के लिए, तब भी उनको पता था ये वापस नहीं आएंगे। जब बड़ी दीदी मनमोहन दीदी जब गए, तब भी आप शायद अगर 83 में कोई होंगे तो अवेक बाप, तो जब वो बॉम्बे जाने से पहले बाबा से मिलने गए दीदी, तो बाबा ने क्या बोला, आज तो जवान लग रही हो बाबा। देखिए बाबा उसमें भी कितना बच्चों को खुश कर देता है, आप तो जवान लग रही है। तो मैं वहीं बैठा था, मैं भी था बाबा ये हॉल में, ओम शांति ओम में, मुझे आश्चर्य लगा, बाबा क्यों ऐसे बोल रहे। मतलब दीदी के साथ बाबा का ना बड़े क्लोज रिलेशनशिप, हंसी मजाक भी करते थे, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें भी सुनाते थे, रहस्य भी उन्होंने खोलते थे उनके सामने। तो इस प्रकार जगदीश भाई कहते हैं ना, दृष्टा ऋषि, ऋषि माना दृष्टा, देखने वाला जानने वाला, ऐसे वो निजी जीवन में भी ऋषि जैसे थे, उनको पता पड़ता था आगे क्या होना है। कई बार मम्मा भी बोला करती थी, बता रहे वो जैसा कोई भी बात की 10 फायदा भी सुनाते थे, 10 उसके नुकसान भी सुना, ये किया तो ये फायदा होगा, ये किया तो इतना नुकसान होगा। तो इसलिए मामा भी कई बार मजाक करते कि तुम पहले सब कुछ देख लेते हो क्या, नुकसान क्या फायदा क्या, इस तरह।
भाई सब भविष्य देखते थे, ऐसा उन्होंने विशेषता थी। कभी उन्होंने विनाश के बारे में, मतलब बुक भी लिखी है, तो विनाश के बारे में उन्होंने कुछ बोला है? जैसे जगदीश भाई जी भविष्य देख लेते थे ना, तो विनाश सृष्टि के विनाश के बारे में, लाइक जो लास्ट जैसे बाबा बोलते हैं ना अंत समय, उसके बारे में भाई साहब कभी आपकी चिट चैट हुई हो या कोई वार्तालाप, या मतलब जैसे बुक लिखते समय उस संबंध में भाई साहब ने कुछ
क्या है? मेरे उनके साथ इतने सालों को 87 से लेकर 2001 तक जो संबंध रहा ना, हम दोनों को बैठ के दो मिनट आपस की बातें करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे लोग उनके पास टाइम लेकर बैठते थे, आधा आधा घंटा बैठते थे, अपने सुनाते थे, उनका सुनते थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला मेरे बारे में उनको सुनाने का, वो अपने बारे में सुनाने का। इतने शेड्यूल बिजी, एकदम टाइट, यहां जब आते थे तब उनको सुबह 6 बजे फोन करना पड़ता था मेरे को, उन्होंने बोल के रखा था जब तक मैं यहां हूं तब तक सुबह 6 बजे मुझे फोन करना, फोन करके आज का अगर कोई अर्जेंट काम है वो है ये है तो मैं बताऊंगा। फिर उनको फोन करके मैं टिफिन करके ज्ञान सरोवर आता था, उनका ऑफिस यही था हार्मनी हाउस में। तो देखो मुझे ये भी एक सौभाग्य की बात है, लोग उनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, टाइम लेना पड़ता था, मुझे रोज 6 बजे उनको फोन करके गुड मॉर्निंग कहने का मौका मिलता था। तो जब वो जाते थे, जो बुलाते थे या हम जाते थे, जितना काम बोलना था या मुझे जितना सुनाना था बस उतना हो गया तुरंत था। मैं एक दिन भी एक मिनट भी एक्स्ट्रा में बैठा नहीं। तो लोग सब लोग यही पूछते भैया अब उनको आपने उन्होंने आपके लिए कुछ बोला तो आपने उनसे कुछ सुना है आपका? मैंने कहा वो मौका ही नहीं मिला, क्या करूं, इतना बिजी कर दिया था उन्होंने। उस जब थे उस समय साल में 4 बुक बनती थी, 4 किताब, हिंदी किताब, हिंदी हो इंग्लिश हो, इतना उन्होंने मैटर दे रखी थी, इतना दिया करते थे। तो बाकी वो जाते जाते उन्होंने ये विश्व का भविष्य किताब है ना उसका उन्होंने करेक्शन करके दिया था, क्योंकि ये बहुत पुराना वर्जन है, इसको नई तरीके से प्रिंट करेंगे, इसलिए उन्होंने सारा करेक्शन करके कुछ ऐड करके दिया था। तो उन्होंने हम करेक्शन करके नीचे प्रिंटिंग प्रेस में आतम भाई को दिया था, लेकिन उन्होंने बड़ों से बात किया, बात करके बोला विनाश के बारे में अभी कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे से ज्यादा बाहर वाले बोल रहे अभी विनाश होगा विनाश होगा, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया, छाप नहीं पाए।
भाई साहब एक चीज ये भी उनकी पर्सनालिटी में देखने को आता है कि भाई साहब बहुत सीरियस टॉपिक पे, मतलब बड़े बड़े टॉपिक पे लिखते थे, बोलते थे कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन साथ साथ में वो बहुत हंसी मजाक भी, चाहे घर वाले हों, उनकी पर्सनालिटी में ये दिखाई पड़ता था। जितना ज्ञान की गहराई वाली बातें होती थी उतना वो मजाक और वो भी बहुत कुछ होता था।
हम लोग भी, मैं भी जब शुरू में जब उन्होंने जब मधुबन आए तब आपको पता है वो उन्होंने, मैं तो ऐसा उतना योग्य नहीं, जब वो ज्ञान सरोवर बना ना उनको डायरेक्टर बनना था ज्ञान सरोवर का, तो उन्होंने सिलेक्ट किया, तो उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, दादी को कहा मुझे एक हैंड चाहिए, तो हैंड चाहिए तो फिर दादन का कौन चाहिए, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे भी पता नहीं था। तो सिलेक्ट किया तो मुझे भी आश्चर्य लगा, भाई मैं तो हिंदी भाषा वाला हूं, मुझे ना हिंदी आती है, हम तो वैसे थोड़ा बहुत इनके साथ आके थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा था, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों चॉइस किया, तो अलग बात है, चलो ठीक है। क्या पूछ रहे था, प्रश्न भूल गया।
वो मनोभा मतलब इतना वो हंसी मजाक भी
का। हाँ हंसी मजाक की बात है। अच्छा तो जब उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया ना तब मैं इनके पास जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट है ये, एकदम एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली में देखा था ना, तो इसलिए 3 महीने तक उनके पास मैं गया नहीं। तो उन्होंने दादी को बोल दिया, दादी मैंने जिंदगी में पहली बार आपको एक हैंड मांगा लेकिन आप अभी तक मेरे पास आया ही नहीं। तो एक दिन दादी ने मेरे को बुला के, आंगन में बैठी हुई थी मैं जा रहा था, बुलाया, महेश इधर आओ। मैंने कहा दादी मैंने तेरे को बोला था जगदीश भाई के पास जाने के लिए, तो अभी तक गया नहीं। तो मैं चुप हो गया। तो दादी ने बोला तेरे कारण मुझे एक घंटा क्लास सुनना पड़ा उसके, अभी जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो उस दिन शाम को गया उनके पास मिलने, तो उनको पता था दादी ने डांटा होगा, तो आके मैं खड़ा हो गया, भाई साहब ओम शांति। तो ओम शांति सिर झुका के खड़ा रहा। तो वो उन्होंने एक कोई कहानी सुनाई मेरे को हंसाने वाली। तो वो जैसा नहीं वो होते ना बुद्धू गुम के रात को वापस आ गया वो ना, उस तरह उसके
आधार बुद्धू घर को आया।
एक कहानी सुनाई मेरे को, सुना के खूब हंसाया, क्योंकि मुझे को तो बहुत अंदर से दुख हो रहा था ना, तो ये हो गया। तो इस तरह वो हंसते तो खूब हंसते थे, इतना हंसते थे तो उनका आंखों में आंसू आ जाता था। तो कई बार वो बोलते थे मुझे रोने से आंसू नहीं आते, हंसने तो आंसू आते, इतना हंसाते थे। और ये कहानी तो आप तो सुना होगा, जब वो लंदन गए थे एक डॉक्टर थे रे भट्ट, उनके अनुभव वो सुनाते थे। वो कहते ये लीवर पेशेंट, लीवर कैंसर था इनको, इनको दिखाने के लिए वहां बुलाया था वो डॉक्टर, इनको देखने के लिए जाते थे। वो अपने अनुभव सुनाते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते खुद ठीक होने के लिए, लेकिन ये डॉक्टरों को ठीक करने वाले। तो वो रोज रात को 10 बजे से 12 बजे तक उनके पास जाते थे, बता रहे बातें करने के लिए, वहां हंसाते थे ये लोग। वो कहानी सुनी होगा ना, वो खीर कैसे होती है, किसने अंधे को किसने पूछा तुम खीर खाए हो, वो कहते खीर कैसा होता है, वो सफेद होता है, सफेद कैसा होता है, बतक जैसे होता है, बतक जैसे वो ऐसा ऐसा दिखाए होता है, वो हाथ ऐसा किया, अरे ऐसा टेढ़ा, वो तो मेरे गले में फंस जाएगा, मुझे नहीं चाहिए खीर खाना नहीं। तो ऐसे ऐसे कहानी सुना सुना के वो कहते मेरा पेट इतना दुखता था, इतना दुखता था। वो कहते इसलिए हम डॉक्टर होके रिफ्रेश होने के लिए उनके पास जाते थे, इतना हंसाते थे। वो जितना गंभीर थे उतना रमणीक भी बहुत थे।
बस एक पुरुषार्थ से संबंधित क्वेश्चन, अगर हम कुछ बातें, सपोज 5 बातें अगर भाई साहब के जीवन से उठाना चाहें शॉर्ट में, तो ऐसी कौन सी 5 बातों को हम ले सकते हैं जो हमारे पुरुषार्थ में या हमारे जीवन में उन्नति के लिए माध्यम बन सकते हैं?
उनके जीवन से मैं तो ये मानता हूं कि उनके सबसे पहला जो था ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसको बोलते हैं, वो बाबा के प्रति अटूट अथाह प्यार था। दूसरा है यज्ञ के प्रति उनकी वफादारी, और तीसरा है बहनों के प्रति आदर भाव। मैंने देखा कितने भी बड़ों को तो सब सम्मान देते हैं, छोटों को थोड़ा कम देते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा वो जो सुबह मुरली सुनते हैं तो किनसे सुनते थे, जो ट्रायल पर होती है ना उन कन्याओं को छोटी बहनों से मुरली सुनते थे, उसमें भी सेवा, उनको भी फायदा और सुनाने वालों को भी फायदा, उनको मुरली कैसे सुनाना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी सिखाते थे, खुद भी मुरली सुनते थे। और बहनों के प्रति इतना इज्जत, तो वो उसको उनको आगे बढ़ाया। और तीसरी बात यह है कि वो जो ईश्वर ज्ञान को है ना, ये ईश्वर जीवन को उन्होंने नेचुरल बनाया। तो हम देखते हैं कई लोग आज स्टूडेंट्स है जो भी है, वो जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, जब हम घर में रहेंगे गृहस्थी, जब हम आश्रम में जाएंगे तब आश्रम वासी, दोनों जीवन अलग अलग समझते हैं। लेकिन इन्होंने अपना दोनों जीवन, ये जीवन ही यही है हमारा, इसके सिवा दूसरा जीवन, नेचुरल जीवन, सहज जीवन जो कहते हैं ना, वो यही है, ईश्वर जीवन ही हमारा ओरिजिनल जीवन है, चलना भी इसके प्रकार और रहना भी इसी जीवन में। इस तरह से उन्होंने इस जीवन को अपना जीवन बना लिया था। और पांचवा मैं समझता हूं उनका जो योगी जीवन था ना, पुरुषार्थ, बहुत नेचुरल और सहज था।
पुरुषार्थ से संबंधित, वैसे उनका पुरुषार्थ क्या होता था, मतलब योग
हाँ उनका योग है ना नेचुरल रहता था। अगर समझिए वो एक वो छोटा बच्चा भी जाता था ना उनके पास तो उनको आप बुला के वो बात करते थे। तो वहां क्या है क्यों तुम बोल सकते थे ना उसको आप क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने शरीर को नहीं देखा, वहां भी उनका पुरुषार्थ आत्मा देखा था, क्योंकि आत्मा को तो बहुत पुरानी है ना, तो वहां भी उनका नेचुरल आत्मिक स्मृति आत्मिक पुरुषार्थ नेचुरल था। और जब वो आप उनके कमरे देखे होंगे छोटा सा कमरा, जब उनका खटिया भी वही है और टेबल भी वही है और डाइनिंग टेबल भी वही है, सब कुछ वही है। वहां बैठे बैठे उनके सामने दीवार पर बाबा का फोटो रहता था, पता है जब वो उठते योग करने बैठते तो बाबा को देखते देखते योग करते थे। और वो जब 2 बजे उठ के योग करते थे तो मुश्किल से 5-10 मिनट योग करते होंगे, कहते कई बार तो 1-2 मिनट में उनका शुरू हो जाता था, बाबा खींचना भाई ये लिखो ये लिखो ये लिखो, लिखवाना शुरू करते थे। एक मजे की बात मैं बताता हूँ, अब एक बार मैं ज्ञानामृत बनाता था, वो सारा टाइप करके जो है ना आजकल जो ज्ञानामृत आता है ना, हम जब दिल्ली में थे तब सारा ज्ञानामृत का टाइपिंग करना फॉर्मेटिंग करना वो बनाता था, पूरा तैयार हो गया, बस फाइनल रात को प्रिंटिंग जाना है क्योंकि उनका डेट फिक्स रहती है पोस्ट करने के। तो सारे प्लेट गिट बन के सब तैयार, अभी छपने के तैयार होना, तब तक जगदीश भाई साहब का फोन आया आतम भाई को, भाई जो मैगजीन है ना इसमें एक मैगजीन रोकना छापना नहीं है, दूसरा मैटर देता हूं वो छापना। तो आतम भाई मेरे पास है, भाई जगदीश भाई का फोन है तो ये मैगजीन नहीं छापना, दूसरा मैगजीन करना। मैंने कहा 2 दिन में पोस्ट करनी है, 32 पेज के मैगजीन तैयार करनी है, दोबारा टाइप करके प्रूफ रीडिंग करना पेज बनाना, तो मैं नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया आप जो आप किसी से करा दो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने जाकर वो सीधा उनको बोला भाई साहब वो मना कर रहा है, तो फिर उन्होंने कहा वो मुझे मेरे से बात कराओ, तो मेरे से बात करने लगे। तो महेश भाई तो ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई साहब ये कैसा हो सकता है, पोस्टिंग डेट फिक्स है, अभी ये सारा फाइनल हो चुका है, अभी दोबारा सारा टाइप करो ये करो बड़े मुश्किल होता है, तो मैं क्या करूं भाई, मैं अपने मर्जी से नहीं करा रहा हूं, वो ऊपर बैठा है ना वो बार बार बोलता है इसको रोको इसको कराओ इसको रोको इसको कराओ, तो शिव बाबा को आप ही बोलो, तब तो मैं कैसे बोल सकता हूं जो शिव बाबा का नाम लिया था। तो रातों रात एक ही दिन में पूरा मैगजीन चेंज करा दिया उन्होंने, वो मतलब आगे कॉन्फ्रेंस आने वाला था, कॉन्फ्रेंस के बारे में वो मैटर था। तो ये है तो मतलब बाबा के साथ को उनका जो रिलेशन है ना नेचुरल और बहुत गहरा था, बहुत गहरा जैसे नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहीं भी हो जैसे वो मीटिंग में जो बात निकालते थे ना, तो अगले जो बाप दादा आते थे वही बातें बोलते थे उनके बारे में, इतना उनका कैचिंग पावर को हो या बाबा के साथ उनका जो क्या कहते हैं समानता का हो क्या वो उनका संकल्प रीड करने का वो बहुत शक्तिशाली है।
जैसे आपने वैसे आज बोला ना कि माताओं को बहनों को बहुत इज्जत देते थे सम्मान करते थे, तो आज मदर्स डे यू नो उसमें मैं जब बुक पढ़ रहा था तो उसमें था कि वो बर्फ की सिल्ली जो सेंटर पे जैसे बहने रहती थी गर्मी के दिनों में तो उनको ठंडा पानी पिलाने के लिए भाई सब बर्फ की सिल्ली साइकिल पे या सर
2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके वो आइस फैक्ट्री होते हैं ना वहां जाके आइस के जो होते हैं ना बड़े बड़े वो खुद उठा के कंधे पर उठा के, उस समय तो कोई साधन नहीं था ना हमारे पास, कंधे पे उठा के ले आके बहनों को शरबत बना के पिलाते थे। ये और माताओं को कैसे माताओं को एक एक माताओं को एक एक टीचर बना देते हैं उन्होंने ये भेदभाव नहीं था ये टीचर है सेंटर में रहने वाली है इनको ज्ञान सुनाने का अधिकार है, जो घर गृहस्थ में रहने वाले ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं, ये नहीं उनको माताओं को भाषण करने कैसे करना है ये सिखाते थे। एक माता बोलती है वो तो घर में पति के सामने बोलने के लिए डरती थी, बोल नहीं सकते वो जो कहा वही है, लेकिन ज्ञान माने के बाद वो गली में सबको इकट्ठा करके भाषण करने लगे, तब उसका पति बोलता है तुम ये कैसे बोल रहे हो मेरे सामने होता है, तो तुम क्या होते तुम ही तो एक आत्मा हो उसको ज्ञान सुनाया भाषण किया, ऐसे कई माताओं को उन्होंने तैयार करके भाषण कराते थे और गीता पाठशाला चलवाते थे। इतना नहीं
वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं पर थोड़े से ज्ञान से संबंधित भी
लेकिन से, समय तो हो गया ना आप
थोड़े से दो दो मिनट का चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूँ वैसे जब इंटरव्यू होता है जैसे सुदेश दीदी थे निर्मला दीदी से कि यू नो हम योग कैसे करते हैं हम सबको मालूम है कि हम आत्मा समझ के मन बुद्धि से परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना है ये है पर स्टिल हमारा आत्मा अभ्यास इतना नहीं होता है क्योंकि हम पूरे दिन कारोबार में होते हैं और बाबा ने जैसे बोला भी है कि पहला अभ्यास वही लास्ट अभ्यास है तो जो योग की एक्यूरेट विधि कभी मतलब सेम फिर वही क्वेश्चन आता है कि भाई साहब से आपने पूछा हो या बुक लिखते समय योग की एक्यूरेट विधि जो हमें अनुभूति हो जैसे आज मैं सवेरे जब आया तो हम कई बार विजुअलाइजेशन कमेंट्री देते हैं कि हम मन बुद्धि से साकार वतन से अव्यक्त गए फिर परम धाम फिर स्वर्ग अलग अलग ड्रिल करते हैं क्या वो योग है या आत्मा समझ के जो बाबा ने एक्यूरेट योग बोला है एक्यूरेट योग क्या है
ये बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि योग हमारे योग कोई योग के लिए कोई विधि विधान नहीं है क्योंकि जो जैसा ये योगासन में होता है ऐसा बैठना चाहिए इतना सांस लेना चाहिए यो करना है कि ये करना ये आत्मा का योग है मानसिक योग है। मैं इस योग के लिए किसी बंधन में किसी को इस योग को किसी बंधन में डालना नहीं चाहता मुझे अच्छा नहीं लगता क्यों मैं बताता हूं इस सृष्टि नाटक में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है आत्मा का संस्कार अलग अलग है संबंध अलग अलग है और इच्छाएं भी अलग अलग है और पाने का जो वस्तु या उनका गुर ये क्या बोलते हैं उसको लक्ष्य अलग अलग है ये अलग अलग होने के कारण हमारे योग की विधि भी अलग अलग है। उदाहरण जब मैं ज्ञान में आया मैं भी यही प्रश्न पूछा था हमारे टीचर से कोर्स तो पूरा हो गया अभी मुझे योग सिखाओ योग क्या सिखाना है योग माना याद है तो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो माँ बाप टीचर सदगुरु तो उनके लिए कोई विधि विधान है क्या याद करने के लिए योग करने के लिए नहीं जैसे तुम लौकिक माता पिता भाई बहन गुरु शिक्षक को याद करते हो ना उस तरह याद करना है लेकिन नेचुरल रूप से वो विधिवत नहीं होता इसी समय करना है यही करना है ऐसे ही करना है नहीं होता उसको आप जब संबंध ना ये मेरा पिता है ये मेरा माता है इस संबंध से याद करते हो ना वो योग है उसमें अनुभव होता है सिर्फ विधिवत मैं आत्मा हूं परंधाम निवासी हूं या परमात्मा की संतान हूं ये है नॉलेज है लेकिन इस नॉलेज के आधार से हमें अनुभव करना पड़ता है उस संबंध से इसलिए संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा बार बार बोलते हैं सर्व संबंधियों को मुझे बनाओ आपको कई बार बाबा हंसाते हैं ना मुझे अपना बच्चा भी बनाओ क्यों कहते हैं क्योंकि हर संबंध में अनुभव अलग अलग है हर संबंध का प्यार अलग अलग है ये उस प्यार से ही हमें क्या होता है अनुभव होता है वो अनुभव से प्राप्ति होती है। जब तक संबंध नहीं है बाबा के साथ आपको अनुभव नहीं होगा जो अनुभव नहीं होगा तो शक्ति नहीं मिलेगी। अभी मैं अभी आते ही देखो हमारे गीत बजाने वो भाई भी बड़े मजेदार है वो कैसे कैसे गीत बजाते हैं आते ही मेरे को मधुबन के गीत बजाए ना वो गीत सुनते मुझे जब मैं पहली बार मधुबन आया था ना वो याद आ गया मन पुलकित हो गया। उस तरह हमारा जो है ना याद भी नेचुरल होना चाहिए इसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसलिए आप जो भी बोलता है मैं विधि तो चाहिए ये जो होता है ना विधा जो करने का जो ढंग है ना वो चाहिए वो अलग है लेकिन वही फाइनल नहीं है। अगर मैं योग की विधि सुनाऊं वो मेरे लिए है मैंने किया, तो आपका वही होना ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन आप उसको सुन के भले आप करो करके अपना अलग से एक योग का विधान विधि रास्ता तैयार करो, क्योंकि मेरी इच्छा अलग है, मेरे संकल्प अलग है, बाबा के साथ का मेरा जो रिलेशन है ना वो अलग ढंग का है, वो रस अलग है। सबको स्वीट अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को खट्टा बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को तीखा बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार संबंधों में बाबा के साथ का संबंध जो है ना, वो जो हमारा जो भावना जो है ना, अब भावना के जो लिमिट है उसके आधार पर योग लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और भावना दोनों चाहिए। भावना माना प्रेम, प्रेम और ज्ञान दोनों मिलके योग बनता है। इसलिए ये ज्ञान मार्ग में भावना, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा भावना चाहिए, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तब जाके आप अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हरेक अपना अपना योग खुद ही तैयार करे, कॉमेंट्री हरेक अपना अपना खुद ही तैयार करे।
थैंक यू भाई सर। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे बाबा बोलता है कि लास्ट का टाइम हलचल वाला होगा, हलचल का टाइम आएगा, माया का अपना प्रभाव होगा, प्रकृति का अपना प्रभाव होगा और वातावरण में भी अलग अलग हलचल होगी। उस समय पे जैसे आज के वरदान में भी था, अचल रहना, अडोल रहना, बाप पे निश्चय रहना, उससे कनेक्शन बने रहना और उनकी जो टचिंग यू नो जो गाइडेंस है वो हमें मिलता रहे, हम उसके लिए क्या प्रसारित करें भाई सब अकॉर्डिंग टू यू?
देखिए जहां तक मेरा अनुभव है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको निश्चय हम बोलते हैं। जिन्होंने बाबा पर पूर्णतः 100% एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, निराधार, ये जो बाबा ने कहा ना, इनको जितना जितना अपने जीवन में समाया है उतना उतना जो भी परीक्षाएं जो भी आते हैं वो बड़ी नहीं लगती। आज भी बाबा ने कई मुरली में सुनाया था, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, जो भी होता है, जितने भी हलचल आते हैं, जितना परिवर्तन होता है, ये होना ही है, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया, ज्ञान दिया, तुम जानते भी है, कोई नई बात नहीं है, जो हुआ था वो हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, निश्चय। और दूसरा बाबा ने यही बोला, संगम युग में ब्राह्मणों के लिए अकल्याण नामक कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी हो, अकल्याण भी लगता है हो तो भी उसमें क्या है, कल्याण है, लेकिन आपको उसको ढूंढना है, परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन का कला चाहिए, बाबा बोलता है। इसलिए मैं तो जहां तक मैं देखो, मेरे को बाबा ने कहां कहां, मैं साउथ में पैदा हुआ, साउथ में पढ़ा, साउथ में ज्ञान लिया, फिर दिल्ली में जाके सेवा किया, फिर मधुबन आया, कहां कहां घुमा, लेकिन मुझे कोई भी रिंचक मात्र, जब मैं दिल्ली गया था मुझे भाषा नहीं आती थी, तो वहां हमारे जो आतम भाई वगैरह बोलते थे मुल्तानी टोन पर बोलते थे, तो वो जो बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट बोलते थे, अंडरस्टैंड ही नहीं होता था, फिर भी हमें वहां रहे, सीखे, किया, सेवा किया, तो आज बाबा ने यहां बिठा है। कारण क्या था, निश्चय, बाबा मेरा है, बाबा जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। सिर्फ जहां तक मैं समझता हूं, बाबा और बाबा का ज्ञान, इस पर निश्चय, सिर्फ निश्चय नहीं तो है ही, अपना ही बना के चले, तो बाबा को साथ रखे, बाबा है हमेशा मेरे साथ है, मेरा रक्षक वही है, तो ये विश्वास है, तो मैं नहीं समझता हूं कोई हल चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहावत पे है, जहां तक विश्वास है तब तक कोई बुराई हो ही नहीं सकती, जब विश्वास हट जाती है तब बुराई दिखाई पड़ती है ना। अगर तो किसी के प्रति हमारा दोस्ती है, विश्वास है, जब तक उस पर विश्वास हो जो भी करेगा अच्छा ही लगेगा, जब विश्वास हट जाएगा वो अच्छा भी करता है तो क्या लगता है, बुरा लगता है। इसलिए बाबा के प्रति हमारा अटूट अटल विश्वास और ज्ञान के बारे में, और सबसे बड़ी बात मैं जो चल रहा हूं ज्ञान के आधार पर वो भी सही है, इससे मैं समझता हूं अटल रह सकेंगे। क्योंकि हमारा जीवन ही एक बाबा ही मेरा जीवन है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने ये भी बताया आगे जाके आपको पांच तत्व तो पांच विकार सब कुछ सब एक ही बार अटैक करेंगे, और संशय भी आएगा और माया भी बहुत आएगी, तरह तरह के रूप में माया आएगी, तो आते रहेंगे क्योंकि अंतिम समय है।
थैंक यू भाई सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अच्छा लगा अनुभव?